श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय क्रमांक 21। इस अध्याय का शीर्षक है गोपियों के द्वारा गोवर्धन का गुणगान। श्लोक क्रमांक 18। हंताय मद्रबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्या पानीय सूयवसकंदर कंदमूलै हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्या पानीय सूयवसकंदर कंदमूलै हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्या पानीय सूयवसकंदर कंदमूलै हंत ओ अयम यह अद्री पर्वत अबला हे सखियों हरिदास वर्य भगवान के सेवकों में से सर्वश्रेष्ठ यत चूंकि राम कृष्ण चरण कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों के स्पर्श स्पर्श से प्रमोद हर्षित मानम आदर तनोति प्रदान करता है सह सात गो गणयो गौवे बछड़े तथा ग्वाल बाल के तयो उन दोनों श्री कृष्ण तथा बलराम को यत क्योंकि पानीय पेयजल के साथ सुयवस अत्यंत मुलायम घास कंदर गुफाएं कंदमूलय तथा खाद्य कंदों से अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा यह गोवर्धन पर्वत समस्त भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है सखियों यह पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ उनकी गौवों बछड़ों तथा ग्वाल बालों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं पीने का पानी अति मुलायम घास गुफाएं फल फूल तथा तरकारियों की पूर्ति करता है इस तरह यह पर्वत भगवान का आदर करता है कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है तात्पर्य उपर्युक्त उद्धरण श्रील प्रभुपाद कृत चैतन्य चरितामृत मध्य लीला से लिया गया है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गोवर्धन पर्वत के ऐश्वर्य की विवेचना इस प्रकार की है पानीय शब्द गोवर्धन पर्वत के झरनों से प्राप्त सुगंधित शीतल जल का द्योतक है जिसे कृष्ण तथा बलराम पिया करते थे और जिससे अपने पांव और मुख धोया करते थे गोवर्धन पर्वत शहद आम का रस तथा पीलू का रस जैसे अन्य पेय भी प्रदान करता है सूर्यवस दूर्वा अर्थात दूब घास को बतलाता है जिससे अर्घ्य की धार्मिक भेंट दी जाती है गोवर्धन पर्वत में घास भी होती है जो सुगंधित मुलायम तथा गौओं की वृद्धि एवं उनमें दूध बढ़ाने के लिए लाभप्रद है इस तरह यह घास आध्यात्मिक पशुओं को खिलाने के काम आती है कंदर गुफाओं का सूचक है जहाँ कृष्ण तथा बलराम उनके संगी खेलते बैठते और लेटते थे ये गुफाएं तब आनंद देती हैं जब या तो बहुत गर्मी हो या सर्दी हो या फिर वर्षा हो रही हो गोवर्धन पर्वत में खाने के मुलायम कंद शरीर सजाने के रत्न बैठने के लिए समतल स्थान तथा चिकने पत्थर चमकीले जल और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में दर्पण तथा दीपक प्रदान करते हैं ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाके चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सह गणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पदान सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधुर जगतपते गोवेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
हरे
कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के रविवार के श्रीमद् भागवतम क्लास में। गोवर्धन पर्वत की महिमा भगवान दर्शा रहे हैं दूसरी शिक्षा के द्वारा। हम लौल्यम का महत्व समझने की कोशिश कर रहे हैं। कमिटमेंट रेफर्स टू एक्सेप्टेंस, स्वीकृति, हमारे स्वेच्छा का सदुपयोग, इसे कहते हैं द आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। और हमारे पिछले सेटिंग में हमने इस कोट से प्रारंभ किया था, यू आर नॉट बॉर्न अ विनर लूजर, यू आर बॉर्न अ चूजर। चूजिंग कृष्णा इज लाइक चूजिंग टू फ्लाई। कृष्णा डजंट प्रॉमिस अ काम फ्लाइट, बट डेफिनेटली ही अश्योर्स सेफ लैंडिंग। तो ये उदाहरण साधना भक्ति के विषय में, जैसे कि कोई बालक जिसके तलवों पर तेल लगाया गया है और साबुन के पानी युक्त फर्श के ऊपर उसको चलने के लिए कहा गया है, तो भौतिक संसार में हमारी स्थिति, एक साधक की स्थिति कुछ इस प्रकार की है। और एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, ये स्थिति हमारी होनी, क्योंकि जब तक इस स्थिति से हम नहीं गुजरते तब तक भक्ति की कदर नहीं होती हमें। सबसे खतरनाक यदि कोई अनर्थ है तो वो है भगवान की कृपा को टेक इट फॉर ग्रांटेड लेना। क्योंकि उसी के अंदर हमारा अहम छुपा है, अहंकार, और अहंकार के द्वारा फिर बाकी सारे अनर्थ। यह अहंकार जो है कि मुझे भगवान की जरूरत नहीं है, या भगवान की कृपा मेरे लिए क्या विशेष कोई उपलब्धि करा कर देगी, ये एक अहंकार है। और उस अहंकार को लेकर हम अपना भौतिक जीवन को भगवान से अलग कर कर सजाने की कोशिश करते। तो उदाहरण दिया है कि जैसे आत्मा को अलग कर कर कोई मृत शरीर को सजाने की कोशिश करे, अप्राणस्य इह देहस्य मंडनम लोक रंजनम। तो इस उदाहरण को हम थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो साधना भक्ति में हमारी विकट परिस्थिति है, क्या ये विकट परिस्थिति हमारे लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक मुद्दा है, भगवान पर हम अपना केंद्र रखें और उसके साथ साथ हमें एक और चीज करनी है कि जितने विक्षेप हैं, जितने प्रलोभन हैं माया देवी के द्वारा, उनसे बचना। कॉशियस ऑफ माया, कॉन्शियस ऑफ कृष्णा। तो इस उदाहरण के संदर्भ में कैसे समझेंगे कि उस फर्श पर, उस चिकने फर्श पर फिसलने का डर क्या केवल उतना ही है? नहीं, केवल उतना ही नहीं है। उसके साथ साथ हम एक एक जो कदम रखेंगे उस चिकने फर्श के ऊपर, उस कदम को रखते समय जो ध्यान हमें देना है, किस पर? हमारे चलने पर। फियरिंग स्लिपिंग फोकसिंग ऑन वॉकिंग, बहुत सिंपल गणित है, कोई ज्यादा यहां पर रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल गणित है। साधना भक्ति दो इन पहलुओं में हम समझ सकते हैं। इसे समझ पाना, इस ये जो एक सिक्के के दो बाजू हैं इनको समझ पाना, ये हमारी प्रगति की शुरुआत है। अब देखिए, एक जो भौतिकतावादी मनुष्य है वो ठीक उल्टा करता है इसका। He is conscious of Maya and cautious of Krishna. कि भगवान से डर के मारे कि भगवान मेरे जीवन में ना आ जाए, हाँ उल्टा है, पूरा उल्टा है, भगवान मेरे जीवन में कहीं से भी ना आ जाए, और जितना हो सके माया देवी छूट ना जाए। इसलिए कई बार हमें अब आश्चर्य लगता होगा कि क्यों एक भौतिकतावादी भक्तों के संग में आने से डरता है। इतना ही नहीं, कुछ भक्त कई वर्ष भक्ति करने के पश्चात स्थिति में आ जाते हैं। दे बिकम अफ्रेड ऑफ कृष्णा। एंड दे आर मोर कॉन्शियस ऑफ माया। उल्टा है, अजीब विडंबना है। हम जिसे अब अजीब विडंबना कह रहे हैं, कई बार आगे चलकर हम भी उसके शिकार बनते हैं, और फिर हमारे लिए कोई देखकर कहता है अजीब विडंबना है। इसे कहते हैं माया का प्रकोप। दिस इज द प्ले ऑफ मटीरियल एनर्जी। तो यहां पर इस उदाहरण में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा फोकस करने लायक है कि मान लो वो बालक या वो साधक उस फर्श के ऊपर चल रहा है, जैसे कि साधारण फर्श है, कोई सूखा फर्श है, कोई साबुन का पानी नहीं, तो आपको क्या लगता है कि फोकस कहां होगा उसका? सूखा फर्श, जैसे हम मंदिर में आए, फर्श सूखा है, दरी बिछी हुई है, आपके तलवों पर भी तेल नहीं लगा हुआ, क्या हम में से जो अब टेंपल हॉल में आए, क्या हमने हमारे चलने के ऊपर फोकस किया? मैं चल रहा हूं मंदिर के अंदर, नहीं, फर्श के ऊपर मैंने पहला कदम लगा, दूसरा कदम, फोकस किया हमने? नहीं। चलते चलते अचानक बीच में आपने देखा साबुन का पानी कहीं गिरा हुआ, या जो पिंक मार्बल है, थोड़ी सी बारिश आई, आप चप्पल नहीं पहने हुए, तुरंत फोकस कहां पर? चलने के ऊपर, संभल कर। तो वो आपके चलने के ऊपर फोकस का कारण क्या था? स्लिपरी फ्लोर। स्लिपरी फ्लोर बिकम्स द रीजन फॉर अवर फोकस ऑन वॉकिंग। तो प्रश्न ये है कि क्या साबुन का पानी अच्छा है या बुरा है? अजीब विडंबना है। क्या साबुन का पानी हमारे लिए अच्छा है या बुरा है? क्योंकि साबुन का पानी, हाँ, जो शुद्ध भक्त हैं उनको साबुन के पानी की जरूरत नहीं पड़ती अपने चलने पर फोकस करने के लिए, क्योंकि हम हमारे मन को लेकर इतने विक्षेपित रहते हैं, इसलिए वो साबुन का पानी माया देवी को डालना पड़ता है, या भगवान कहते हैं डालो साबुन का पानी, ताकि ये अपने भक्ति में जो कदम ले रहा है, मुझ पर जो फोकस करने का कोशिश कर रहा है, उस पर फोकस करे। आप लोग वृंदावन गए होंगे, वृंदावन के बंदर देखे होंगे आपने। अब देखिए, कुछ एक ऐसी जगह है वृंदावन में, जैसे सेवा कुंज इत्यादि, जहां पर उनका जो गिरोह है बहुत जोर में है। तो मैंने अनुभव किया, पिछली दफा जब मैं वृंदावन गया था पिछले साल, तो मैंने अनुभव किया कि मैं दर्शन के लिए वो राधा रमण मंदिर के लिए जा रहा था, तो वहां पर मेरे साथ और भी कुछ भक्त थे, चलकर हम लोग जा रहे थे। तो वो गली में जहां पर सबसे ज्यादा बंदर दिखते हैं, या जिनका डर, बंदरों का डर, वहां प्रवेश करने से पहले सभी इत्मीनान से फुर्सत से चल रहे थे। जैसे ही उन्होंने उस गली में प्रवेश किया जहां पर अब इतने सारे बंदर घेराव करे हुए बैठे हैं ताक में, तुरंत मैंने क्या देखा, सभी अपने चश्मे संभालने लगे, सेलफोन संभालने लगे, पर्स संभालने लगे, सब संभालने लगे। यही कॉन्सेप्ट है। तो बंदरों ने किया क्या, उनको ध्यानस्थ बनाया। तो उस समय वो जो ध्यान लगाए, संभाले, किसे संभाले, देखिए, उन्होंने जो मैंने फोकस किया, उन्होंने ऐसी वस्तुओं को संभाला जो उनके लिए वैल्यूएबल है, जो उनके लिए वैल्यूएबल। किसी ने भी रास्ते के पत्थरों को संभालना नहीं है, अरे पत्थर ले जाएगा बंदर, संभालो संभालो पत्थरों ना? क्योंकि वो उनके लिए कोई मूल्य नहीं रखता। तो ये परीक्षा है हमारी। परीक्षा क्या है कि यदि हम प्रामाणिक साधक हैं, भगवान बहुत सिंपल एक टेस्ट में हमारा पर्दाफाश कर देते हैं कि वो स्लिपरी या साबुन का पानी फेंक कर भगवान ये चेक करते हैं कि ये किसको संभालता है। यदि ये अपनी कृष्ण भक्ति को संभाल रहा है, मतलब सबकॉन्शियसली ये मेरे बारे में ही सोचता रहता है। देखिए, ऐसी चीजें जिनको आज का समाज बुरा कहता है, जैसे बुरी लत, सिगरेट पीना, शराब पीना, टीवी इतना देखना, हाँ, बच्चों को ये सब हर बार उनके ऊपर रोकथाम करनी पड़ती है कि इतना टीवी मत देखो, अरे भाई इतना तुम फेसबुक पर मत रहो, इतना व्हाट्सएप पर मत रहो, इतना ये सब कुछ बोला जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसकी लत लग जाती है, फेसबुक की लत लग जाती है, वीडियो गेम खेलने की लत लग जाती है, टीवी देखने की लत लग जाती है। समझते हैं ना, लत, एडिक्शन, लत लग जाना। कभी आपने कोई ऐसा सेमिनार सुना है जहां पर प्रवक्ता सेमिनार दे रहा है हाउ टू बी ऑन द फेसबुक? उल्टे सेमिनार देने पड़ते हैं। तो क्यों ये इतने हम क्लासेस लेते हैं, इतना सब कुछ खोजबीन कर कर सुनते हैं, सुनाते हैं हमारे मन के बारे में, हमारे इंद्रियों के बारे में? तो यदि हमारे मन को काबू में रखना है, कॉन्सेंट्रेशन, इतना हम लोग, मन हमारा काबू में नहीं होता है, यहाँ वहाँ भागता रहता है, इंद्रियां हमारी काबू में नहीं, यहाँ वहाँ भागती रहती, इतना सब कुछ हम उसके बारे में चिंतित रहते हैं। अब आप जाओ गूगल करो हाउ टू कॉन्सेंट्रेट योर माइंड, इतने सारे आपको लिंक्स मिलेंगे, अलग अलग तरीके माइंड को कैसे आपको वश में लाना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, बहुत मुश्किल है। इस्कॉन के अंदर इतने बतेरे सेमिनार हैं माइंड कंट्रोल के ऊपर, ये कर लो वो कर लो सब कुछ। ऐसा नहीं कि हम नहीं जानते, सब जानते हैं, पर क्यों नहीं कर पाते? प्रश्न ये है कि जानते बूझते हुए वो हो क्यों नहीं पा रहा है? जो हमारे लिए अनुकूल है, जो हमारी भक्ति को लिए प्रगतिशील है, क्यों वो चीजें हम नहीं अपना पा रहे? आप लोग सोच रहे होंगे, बोल ना फिर जल्दी, घुमा फिरा के से लगा रखा है प्रोजेक्टर, असली बताऊंगा भी बताऊंगा। एक ही शब्द है, इसका उत्तर एक ही शब्द में है। आप लोग सोचो एक ही शब्द का उत्तर है, इतना समय से तुम घुमा रहे हो फिरा रहे, एक ही शब्द में उत्तर देने वाले? हाँ, क्योंकि वो याद रहे इसलिए एक ही शब्द। कि हम भक्ति में जो कुछ करते हैं, या भक्ति छोड़ दीजिए, हमारे इस मनुष्य जीवन में जो कुछ हम करते हैं, उसके पीछे वो एक शब्द है, वजह। कौन सा शब्द है वो? वजह। मैं क्यों कर रहा हूं, वजह क्या है मेरी भक्ति करने की, मैं यहां पर आज बैठा हुआ हूं, वजह क्या है? मैंने दीक्षा ली, वजह क्या है? मैंने भगवान को चुना, वजह क्या है? क्या ढूंढना है हमें? रीजन। और अधिकांश हम देखते हैं कि चाहे बाहर हो चाहे भक्ति में हो, वो अपने जीवन में कभी प्रगति नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने कभी अपनी वजह ही नहीं ढूंढी। आप लिस्ट निकालो आपकी जिंदगी में कितनी चीजें जिनमें आपको बोरियत होती है, उसकी एक ही वजह है कि आपके पास कोई वजह नहीं है। कई बार जो एकदम हार्ड कोर मटीरियलिस्टिक लोग होते हैं ना, पूरा फोकस्ड हैं वो कि बस पैसा, इंद्रिय भोग, नाम प्रतिष्ठा, बस उसके ऊपर फोकस्ड हैं। कई बार आप उनके पास जाओ, उनको पूछो, तो वो लोग बहुत क्लैरिटी है उनके थॉट में, वजह उनको पता है। क्या है वजह? ऐशो आराम का जीवन, इंद्रिय भोग का जीवन, एवरीथिंग इज वेरी क्लियर। कई बार हम लोग जो बीच में अटके हुए साधक, हमको कोई आके इंटरव्यू कर पूछे कि भाई क्या कर रहे हो तुम यहां पर, इतने सालों से ही तुम कर क्या रहे हो, क्यों कर रहे हो? कई बार हम भी बोले कि आप क्यों, मैं ये प्रश्न अपने आप को पूछता रह रहा हूं। तो जब तक हमारे पास एक स्ट्रांग रीजन नहीं है जो कुछ हम कर रहे हैं उसका, नहीं टिकेगा, नहीं टिकते हैं भक्त। उनको जाकर पूछो क्यों छोड़ दिया आपने भक्ति, क्यों भक्तों का संग छोड़ दिया? अरे मेरे पास कोई वजह नहीं थी रहने की। यदि माया देवी हमें वजह देती है छोड़ने की, तो उससे ज्यादा हमारे पास वजह होनी चाहिए रहने की। समझ में आ रहा है? यदि माया देवी लिस्ट दे रही है कि 10 कारण दे रही है भक्ति छोड़ो, बकवास है, तो हमें माया देवी को पलटकर उसके मुंह पर क्या मारना है? 20 कारण भक्ति में रहने के। उससे पहले प्रश्न यह है कि क्या हमारे पास वो 20 कारण हैं? उसके पास तो है। और कई बार माया देवी की जो लिस्ट है हम ही लिखते हैं, वो डिक्टेट करती है, लिखते हम हैं, और वो कुछ भूल जाए तो हम ऐड करते हैं। इसलिए ये सारे जो प्रश्न होते हैं ना कि क्यों भगवान अपने भक्तों को इतनी कठिनाई से गुजरने के लिए छोड़ देते हैं, क्यों वो ऐसे कर हमारा मन वश में नहीं करा देते, हमारे इंद्रियों को वश में नहीं करा देते, क्यों कलयुग का इतना प्रकोप भगवान करवा रहे हैं, क्यों समय का प्रभाव इतना है, क्यों ये सब कुछ? अरे ये सब कुछ यदि नहीं होता तो हमारे पास कोई वजह नहीं होती भगवान पर फोकस करने के लिए। हाल ही का मैं एक उदाहरण स्वयं का मैं देना चाहूंगा। मैं जब कुछ महीने पहले यूके में था, तो वहां पर हमारे एक भक्त हैं चक्रधारी प्रभु, तो उनके घर पर मैं रुका हुआ था कुछ दिनों के लिए। तो उनका घर एक ऐसी जगह पर शहर से दूर, बहुत ही सुंदर वातावरण, पहाड़ों के बीच में उनका घर। तो एक दिन मैं बीड बैग लेकर जप करने के लिए निकला बाहर। मौसम थोड़ा अच्छा था, बारिश नहीं थी, वहाँ पर बारिश अक्सर होती रहती तो बाहर नहीं जा सकते आप, सब कुछ बंद रहता है। तो फिर मैं बाहर निकला तो उनका बैकयार्ड, जितना हमारा ये मंदिर है इतना बड़ा, तो उनका एक बैकयार्ड, आधा एकड़ का उनका बैकयार्ड खुद का उनका, और फिर वो बैकयार्ड का फेंस क्रॉस कर कर ऐसे छोटे छोटे पहाड़, गोचर भूमि जिसको आप कहोगे, और वो उसी के लिए बनाई हुई है, वहाँ पर की जो गायें हैं उन गायों को चरने के लिए वो छोटे छोटे पहाड़, परंतु एकड़ में फैले हुए बहुत दूर दूर तक केवल हरी घास ऐसे छोटे छोटे पहाड़ों पर। तो इतना सुंदर वो माहौल, आप कल्पना कर पा रहे होंगे कि क्या माहौल होगा, वो अच्छा मौसम सब जगह पर एकदम हरी घास, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई हॉर्न की आवाज़ नहीं, कोई किसी के लाउड स्पीकर की आवाज़ नहीं। तो मैं वो बैकयार्ड क्रॉस कर कर उस गोचर भूमि, वो छोटे से हिल पर गया जप करने के लिए, चलते 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 मैं कुछ 2-3 किलोमीटर आगे निकल गया पहाड़ के ऊपर, और फिर वहां से मैं देख रहा था नजारा, इतना सुंदर नजारा लग रहा था, बहुत ही आनंद आ रहा था। और दूर मैंने देखा दूसरे प्लॉट पर, उसके बीच में जिस प्लॉट पर मैं था, एक फेंसिंग बीच में, और उसके बाद में जो दूसरा प्लॉट, मतलब वो कुछ और 3-4 किलोमीटर दूर होगा, वहां पर कुछ गाय घास चर रही थी। कैसा लगेगा आपको, इतनी दूर 20-25 गाय घास चर रही है, कितना सुंदर दृश्य, शांतिमय वातावरण है ना। हरे कृष्णा कर रहा हूं मैं। फिर मैंने देखा कुछ समय बाद वो जो 20-25 गाय वो मेरी ओर देखने लगी, तो मुझे और अच्छा लगा, गाय देख रही है अच्छी बात है। तो मैं इस तरफ मुड़कर और थोड़े नजारे देख रहा था, फिर मैंने मुड़कर देखा, अब मैंने जब देखा तो वो गाय, उनका पूरा गिरोह वो मेरी ओर भागने लगे। अब वो घास नहीं चर रहे थे, अब वो खड़े होकर मुझे देख नहीं रहे थे, वो सब भागने लगे मेरी ओर। और ये मैं कह रहा हूं हमारी भारतीय गाय नहीं है, ये वहां की जर्सी गाय, एक एक गाय 500 किलो की होगी शायद, देखी होगी आपने जर्सी गाय, बड़ी बड़ी भरकम ऐसी, तकरीबन उनमें से बैल भी सांड भी सब थे, पूरा उनका खानदान। तब तक मैं इत्मीनान रखा था क्योंकि मुझे लगा फेंसिंग है, फेंसिंग से कूद कर ये थोड़ी आ सकते हैं, ऐसे कुछ 4.5-5 फुट का फेंसिंग था। तो मैंने देखा कि उसका जो गेट जो मुझे इतनी दूर से बंद दिख रहा था वो खुला हुआ था, वो गेट से अब मैं जिस प्लॉट पर था वो प्लॉट पर आ गए। अब मुझे समझ में आया कि खतरे की घंटी होती ना, अब खतरे की घंटी बजी कि वो हम एक ही प्लॉट में, अब पूरा फेंसिंग किया हुआ प्लॉट है वो, और मैं कोने में हूं उसके, वो पहाड़ पर चढ़ा हुआ, और ये लोग सब अंदर प्रवेश कर गए। तो मैं भागना शुरू किया, अब एक तो लाल कपड़े देखकर उनको शायद प्रेरणा मिली होगी आने की, तो मैं भागना शुरू किया, वो मेरी ओर भागना शुरू किए, और एक अब ऐसा पॉइंट आ रहा था कि जहां पर वो लोग मेरे ऊपर हावी हो जाते, कोई चांस नहीं था कि मैं उनको आउटरन कर सकूं, इतने वो और स्पीड में। और मुझे वो डिवोटी ने गम्बूट दिए थे पहनने के लिए कि प्रभु आप गम्बूट पहनकर जाइए, क्योंकि पता नहीं कहीं कुछ कीचड़ हो या कोई कीड़ा वाड़ा काट ले आपको, तो मैं गम्बूट में कैसे भाग सकते हो। तो भागने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर वो मीटिंग पॉइंट आ रहा है हम मेरा और इन 25 गायों का। उस समय से पहले मेरे हाथ में बीडबैग थी, लेकिन मेरा फोकस बीडबैग पर नहीं था। मेरा फोकस क्या था, कितना सुंदर आज मौसम है, वातावरण है, कितना माहौल अच्छा हो रहा है। यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा था कि कैसे एक के बाद एक माला खत्म होते जा रही है। परंतु जैसे ही अब ये पॉइंट पर आ गया मैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस, और आप विश्वास नहीं करेंगे, इतने निकट वो गाय आ गए थे कि उनकी आंखों में मैं देख पा रहा था कि उनकी आंखों में जो आक्रोश था, जो क्रोध था, और जो आवाजें आ रही थी उनके हांफने से, जोर जोर से, जैसे कोई भागता है, वो जानवर हांफता है, विम्परिंग जिसको कहते हैं, उस प्रकार की आवाज। तो मैंने सोच लिया कि भाई अब यहाँ पर जो भी है, बीडबैग तो है हाथ में, जब तो कर रहे हैं, और गो माता है, आप लोगों को याद करके कि भाई कुछ हो जाए तो कम से कम ये तसल्ली होगी कि गौ माता के हाथ से कुछ हुआ। उसमें से मैं ढूंढ रहा था कि बैल मत आना भाई, गाय आ जाना, जिसको भी मारना है गाय आ जाओ पहले। तो मैंने अपना हरे कृष्णा शुरू किया। तो उस समय मुझे याद ये बात आई, हमको हमारे एयरफोर्स के ट्रेनिंग में ये बात सिखाई गई थी। एक हमारी ट्रेनिंग हुई थी वॉर सिमुलेशन की जंगलों में, तो उसमें एक हमको ट्रेनिंग दी गई थी कि यदि कोई ऐसा भारी भरकम जानवर, खूंखार जानवर आपके पीछे लग जाए, आपके पास कुछ नहीं आपको बचाने के लिए, तो एक तरीका है, उसे भ्रमित करने का एक तरीका है कि आप गोल घूमने लग जाओ, रन इन सर्कल्स, क्योंकि उसका इतना भारी भरकम शरीर, तो उनमें इतना दिमाग नहीं होता है कि ये बेवकूफ बना रहा है मुझे गोल घूमने के, उनमें उतना दिमाग नहीं होता है। तो आप गोल घूमो तो वो कट करके ऑपोजिट साइड से नहीं आ सकते, वो भी पीछे पीछे आपके गोल घूमते हैं फिर, और जितना लंबा सर्कल आप करोगे उतना आपको डिस्टेंस उनसे मिलता जाएगा, क्योंकि वो टर्न नहीं मार पाते, इतना बड़ा शरीर है, सिर्फ टर्न मार पाना मुश्किल। तो वो मुझे उस समय ध्यान में आया, तो वो जस्ट एक अब 5-10 सेकेंड अगर मैं देरी करता तो राम नाम सत्य हो जाता वहां पे। और वो बाद में प्रभु जी मुझे कहे कि वो देख रहे थे, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनको दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे बहुत से केसेस हुए हैं, क्योंकि कोई इंसान कोई ये गाय देखती नहीं, यहाँ पर कोई इंसान घूमते ही नहीं वहां पर, और प्लस आपने ये कपड़े पहन रखे हैं, तो इसलिए उनको एक थ्रेट लगा। तो ऐसे केसेस हुए हैं जहां पर ये पर्टिकुलर सेट ऑफ काउस इन्होंने खत्म कर दिया है किसी ट्रेसपासर को, बोला ऐसे केसेस हुए हैं। तो ये डिवोटी एकदम डरे हुए, तो वो जो केवल 5-10 सेकेंड मेरे पास था, तो मैं जब गोल घूमने लगा तो वो 25 की 25 जो भी वो गाय थी मेरे पीछे 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 पीछे, मैंने कुछ 10-11 चक्कर उसके ऐसे लगाए, और वो भी मेरे पीछे पीछे घूम रहे, प्रदक्षिणा हम दोनों कर रहे हैं। और उनके अंदर वो जो क्रोध बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा, क्योंकि मैं हाथ में नहीं आ रहा। और फिर कुछ 12वें-13वें सर्कल के बाद फिर उनको मैंने कट किया, तो थोड़ा मुझे डिस्टेंस मिला, बफर मिला, उसमें कुछ हो सकता है कि जैसे मैं यहां पर हूं और टेंपल हॉल का सेंटर पॉइंट, इतना डिस्टेंस मुझे मिला, वो लोग भी कट करके पीछे भागने लगे। तब तक मैं उनके बैकयार्ड के फेंस तक पहुंचा, एक हाथ मैंने वो फेंस पर रखा, और फिर जैसे वो हाई जंप टाइप पोल वॉल्ट उस प्रकार से जंप मारकर उस तरफ जब मैं गिरा, तब सांस में सांस आई, तो भगवान को धन्यवाद किया कि अब तक जिंदा हूं। तो मेरा साक्षात्कार ये था कि भगवान उन गायों को भेजे, जो इतने बड़े बड़े बैल इत्यादि को भेजे, क्योंकि मैं अपने जप को छोड़ के नजारे देख रहा था, है ना।